श्यामली ने भारी मन से सुषमा देवी के कमरे की दहलीज लांघी। कमरा वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, नीचे का सबसे बेहतरीन कमरा। चारों तरफ अलमारियों में सजी धर्म कर्म की मोटी किताबें, कुछ बहुत पुरानी जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हवा में अगरबत्ती की गंध घुली हुई थी, पर्दे आधे खिंचे थे जिससे भीतर धूप की पतली लकीरें जमीन पर गिर रही थीं। कमरे के बीचों बीच सुषमा देवी बिस्तर पर बैठी थीं, पीठ के पीछे तकिए सजे थे, गोद में एक मोटी किताब रखी थी जिसे वे पढ़ नहीं रही थीं, बस थामे हुए थीं। उनकी नज़र सीधी श्यामली पर थी, ठहरी हुई, गहरी और बिना पलक झपकाए। श्यामली के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसे ठीक से पता नहीं था कि डर किस बात का है, डांट का, सवालों का, या फिर किसी ऐसी बात का जो सुषमा देवी अचानक कह दें और वो संभाल ही ना पाए। आओ, सुषमा देवी की आवाज़ कमरे में गूंजी, ना ऊंची ना नीची, बस सख्त। श्यामली ने धीरे धीरे पास जाकर हाथ जोड़ लिए। जी मौसी जी, सुषमा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वे नज़र जैसे कपड़ों को नहीं, मन को परख रही हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, रत्ना ने तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफ की है। श्यामली का दिल और जोर से धड़क उठा। कहती है पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुलझी हुई है, काम में तेज है, बोलने में मर्यादा रखती है। सुषमा देवी ने एक एक शब्द ठहर कर कहा। और भी बहुत सी तारीफें, श्यामली ने बस सिर झुका लिया। जी, इसलिए, सुषमा देवी ने बात आगे बढ़ाई, मैंने सोचा है कि रोज़ सुबह तुम मेरे लिए ये किताबें पढ़ा करोगी। उन्होंने पास रखी अलमारी की तरफ इशारा किया। श्यामली के लिए ये बात अचानक थी, मगर उसने बिना हिचक कहा, जी मौसी जी, ज़रूर। उसके हाँ कहते ही सुषमा देवी की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, संतोष या कुछ और, ये समझ पाना मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने किताब बंद की, अब खाने के बारे में बताओ, आज क्या बना है? श्यामली ने सांस संभालते हुए जवाब देना शुरू किया। आज दाल, लौकी की सब्जी, रोटियां और चावल बने हैं। दाल में ज़्यादा मसाला नहीं है, डॉक्टर ने। मिठास? सुषमा देवी ने बीच में टोका। नहीं, श्यामली जल्दी से बोली, नमक भी नाप कर डाला है, तेल कम है। और वो बोलती जा रही थी, मगर हर शब्द के साथ उसके भीतर डर बना हुआ था, जैसे किसी परीक्षा में खड़ी हो। सुषमा देवी ने ध्यान से सुना, फिर सिर हिलाया, ठीक है, सब मेरी पसंद का है। ये सुनते ही श्यामली के भीतर जैसे एक बोझ हल्का हुआ। उसने राहत की सांस ली, इतनी हल्की कि शायद खुद भी महसूस ना करे, पर सुषमा देवी की नज़र से वो नहीं बची। अगले ही पल सुषमा देवी ने कहा, लेकिन, वो लेकिन कमरे में किसी पत्थर की तरह गिरा। स्वाद? उन्होंने धीरे से कहा, वो तो खाकर ही पता चलेगा। श्यामली का दिल फिर धक से रह गया। जी, मैंने कोशिश की है। कोशिश काफ़ी नहीं होती, सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा। हाथों में स्वाद है या नहीं, ये वक्त बताएगा। श्यामली फिर घबरा गई। असल में वो इसलिए नहीं डर रही थी कि खाना कैसा बनेगा, वो इसलिए डर रही थी क्योंकि सुषमा देवी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, सख्त, ठंडी और ऐसी कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पकड़ थी, जैसे वे इंसान को नहीं, उसके बीते हुए वक्त को देख रही हों। अब जाओ, सुषमा देवी ने हाथ हिलाया। श्यामली ने फिर हाथ जोड़े, जी। वो मुड़ी, कदम बढ़ाए, दिल चाहता था कि जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाए। तभी पीछे से आवाज़ आई, श्यामली। उसके कदम वहीं जम गए। जी मौसी जी, उसने पलटकर कहा, मगर नज़र फिर भी पूरी तरह उठ नहीं पाई। सुषमा देवी उसे देखती रहीं, फिर बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट में बोली, बड़ी अजीब बात है। श्यामली का गला सूख गया। तुम्हें मैं याद नहीं, सुषमा देवी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। और अब, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, उस दिन तुमने जो किया था उसका खामियाजा तुम यहीं भुगतो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। श्यामली का सिर घूम गया, उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। दिमाग में कुछ धुंधले से दृश्य कौन थे, कोई दिन, कोई जगह, कोई डर, मगर सब अधूरा। मौसी जी, उसकी आवाज़ कांप गई। सुषमा देवी ने जवाब नहीं दिया, वे बस उसे देखती रहीं, ऐसी नज़र से जिसमें शिकायत नहीं बल्कि यादें थीं। श्यामली बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद होते ही उसने दीवार का सहारा ले लिया। सांसें तेज हो गईं। क्या क्या किया था मैंने, उसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि ये घर, ये लोग और ख़ासकर सुषमा देवी सब उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं जितना वो खुद जानती है, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। अदिति हवेली लौट आई थी। लंबा सफ़र और मन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने पर्स सोफे पर रखा और गहरी सांस ली। खिड़की से आती ठंडी हवा भी आज उसे हल्की सी भारी लग रही थी। आर्यन पहले से ही कमरे में था। उसे देखते ही वो उठकर उसकी तरफ आया। माँ कैसी हैं, उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। तबीयत ठीक है ना, अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अभी तो ठीक है, फिर एक पल रुक कर बोली, लेकिन पता नहीं आजकल पापा को क्या हो गया है, वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। आंखों में नाराजगी और बेबसी दोनों थे। वहां माँ बीमार है और वो अभी भी ऑफिस में ही लगे हुए हैं, उसकी आवाज भराई। मैंने कई बार फोन किया, हर बार काट दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आर्यन पास आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अदिति की बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोला, देखो हो सकता है कोई जरूरी काम फंसा हो। तुम्हारे पापा ऐसे तो नहीं है कि जानबूझकर, लेकिन माँ की तबीयत। अदिति ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं जानता हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा, पर कभी कभी आदमी मजबूरी में उलझ जाता है। शायद वो सोच रहे हों कि काम निपटा लें ताकि बाद में चैन से साथ रह सकें। अदिति चुप हो गई, उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। ये भी हो सकता है, आर्यन ने आगे कहा, कि वो दिखाते नहीं पर अंदर से परेशान हो। कुछ लोग चिंता को ऐसे ही संभालते हैं, काम में खुद को डुबोकर। अदिति ने उसकी तरफ देखा। काश वो एक बार फोन उठा लेते, वो धीमे से बोली, बस इतना ही काफी था, आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शायद वो भी यही सोच रहे हों कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। अदिति का मन पूरी तरह नहीं माना, लेकिन आर्यन की बातों ने उसकी बेचैनी थोड़ी कम जरूर कर दी।